अध्याय 10 महाजनपद काल। ऋग्वेद के वर्णन से प्रकट होता है कि आर्य अनेक जनों में विभक्त थे। जन अपने को किसी एक पूर्वज के संतान मानते थे। प्रत्येक जन्म में अनेक कुटुंब होते थे, अतः एक ही जाति पुरुष से उत्पन्न विभिन्न कुटुंबों के समुदाय का नाम जन था। प्रारंभ में इन जनों का कोई एक निश्चित स्थायी स्थान न था, ये एक स्थान से दूसरे स्थान को घूमा करते थे। ऋग्वेद में जनों का उल्लेख आता है, परंतु जनपदों का नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय तक जनों ने अपने स्थायी राज्य स्थापित न किए थे। वैदिक संहिताओं में भी जनपद शब्द का प्रयोग नहीं मिलता। सर्वप्रथम इसका प्रयोग ब्राह्मणों में हुआ है, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि जनपदों का उदय ब्राह्मण काल से हुआ। महात्मा बुद्ध के समय तक आते आते इन जनपदों का पूर्ण विकास हो गया था। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक के युग को भारतीय इतिहास में जनपद या महाजनपद युग कहा जा सकता है। समस्त देश में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जनपदों का ताता फैल गया था। एक प्रकार से जनपद राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन की इकाई बन गए थे। जिस प्रदेश में एक जन स्थायी रूप से बस गया, वही उसका जनपद हो गया। प्रारंभ में जनपद में किसी एक वर्ग विशेष के मनुष्य ही रहते थे, अतः उनका जीवन एक ही जाति राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परंपरा के ऊपर संगठित था। परंतु कालांतर में अन्य वर्गों और जातियों के लोग भी आकर उनके जनपदों में बसने लगे। इससे सांस्कृतिक आदान प्रदान तो हुआ, परंतु बहुत समय तक राजसत्ता एकमात्र आदिजन के प्रतिनिधियों के हाथ में ही रही। उदाहरणार्थ लिच्छवी जन में 7,707 कुल थे। राजसत्ता इन्हीं के प्रतिनिधियों के हाथ में केंद्रित थी। प्रत्येक जनपद में बहुसंख्यक गांव और नगर होते थे। काशिकाकार ने लिखा है कि ग्रामों का समुदाय ही जनपद है। यहाँ पर ग्रामों में नगरों की भी गणना कर लेनी चाहिए। धीरे धीरे जनपदों की संख्या कम होने लगी। छोटे जनपद बड़े जनपदों में निमंजित होने लगे। इस भांति देश में महाजनपद काल का उदय हुआ। महात्मा बुद्ध के आविर्भाव के पूर्व भारतवर्ष में 16 महाजनपदों में विभक्त था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में इनके नाम निम्न प्रकार मिलते हैं: अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, केदी, वस, कुरु, अंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अशक, अवंती, गांधार, काम्बोज। परंतु जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में यह सूची कुछ भिन्न प्रकार से मिलती है: अंग, बग, मगह, मलय, मालव, अच, कच्छ, पाघ, लाघ, वज्जी, मोली, काशी, कौशल, अवाह, समुत्तर। दोनों सूचियों में अंग, मगध, वस, वज्जी, काशी, कौशल समान है। जैन सूची के मालवा और मौली सूची के क्रम से अवंती और मल्ल है, परंतु शेष जनपदों में अंतर है। जैन सूची बौद्ध सूची से बात की प्रतीत होती है। बौद्ध सूची के महाजनपदों के विषय में कुछ कह देना समीचीन प्रतीत होता है। पहला अंग या मगध के पश्चिम में था। दोनों जनपदों को पृथक करती हुई बीच में चंपा नदी बहती थी। चंपा नदी के तट पर बसी हुई अंग जनपद की राजधानी का नाम भी चंपा था। बुद्धकालीन 6 बड़े नगरों में चंपा नगर की गणना की गई है। प्रारंभ में अंग एक शक्तिशाली जनपद था। विदुर पंडित जातक के अनुसार राजगृह प्रारंभ में अंग का ही एक नगर था। कालांतर में मगध राज की शक्ति बढ़ी और अंग राज उसी में निमज्जित हो गया। दूसरा मगध वर्तमान बिहार के पटना और गया जिले इस राज्य के अंतर्गत थे। प्रारंभ में इसकी राजधानी गिरिब्रज थी। महात्मा बुद्ध के पूर्व बृहदर्थ और जरासंघ मगध के 2 प्रसिद्ध राजा थे। तीसरा काशी की राजधानी वाराणसी थी, जो वरुणा और 80 नदियों के संगम पर बसी थी। गुत्तिल जातक के अनुसार यह नगरी 12 योजन विस्तृत थी और भारतवर्ष की सर्वप्रथम नगरी थी। महावज्ञ में काशी राज्य की शक्ति और समृद्धि का वर्णन मिलता है। जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। चौथा कौशल इसके अंतर्गत अवध का प्रदेश आता था। शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु इसी कौशल राज्य के अंतर्गत थी। महात्मा बुद्ध के समय श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी, परंतु काल में कौशल की राजधानी अयोध्या थी। कौशल और काशी का रमनस्य परंपरागत था। कौशल नरेश कंश ने काशी पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। पांचवा वज्जी या अष्ट राज्यों का संघ था। इन राज्यों में लिच्छवी, विदेह और यात्रिक विशेष महत्वपूर्ण थे। विदेह की राजधानी मिथिला, लिच्छवियों की राजधानी वैशाली और यात्रिकों की राजधानी कुंड ग्राम थी। ये सारे राज्य आधुनिक बिहार प्रांत में स्थित थे। महात्मा बुद्ध के समय तक यह वज्जी संघ विद्यमान था। कालांतर में मगध के राजा जासत्रु ने इसे अपने राज्य में मिला लिया था। पाणिनि के अष्टाध्यायी में वज्जी का उल्लेख है। कौटिल्य ने वज्जी को लिच्छवियों से पृथक बताया है। छठवां मल्ल वज्जी राज्य की भांति मल्ल राज्य भी एक संघ राज्य था। इस संघ राज्य में मल्लों की 2 शाखाएं सम्मिलित थी, एक कुशीनारा की मल्ल शाखा, और दूसरी पावा की मल्लसा का महाभारत में भी मल्लराज का दो भागों में उल्लेख किया गया है। कुशावती का मल्लराज और पावा का मल्लराज। कुशीनारा आधुनिक देवरिया जिले में, कश्या और पावा आधुनिक पड़ोरौना था। सातवा चेदी आधुनिक बुंदेलखंड तथा उसका समीपवर्ती प्रदेश उसके अंतर्गत था। इसकी राजधानी शक्तिमती थी। जातकों की वर्णित सत्वती यही नगरी थी। चेदी राज्य का उल्लेख महाभारत में भी आता है। शिशुपाल यही का राजा था। आठवा मत्स्यावन गंगा नदी के दक्षिण की ओर वह प्रदेश जो यमुना नदी के तट पर स्थित था वत्सराज के अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी जो इलाहाबाद से 30 मील की दूरी पर है। ओल्डेन वर्ग महोदय ने ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित वंशज को वंश अथवा वत्स बताया है, परंतु यह समीकरण संदिग्ध है। पुराणों में वत्स राज्य का वर्णन है। गंगा के भयानक बाण से जब हस्तिनापुर नष्ट हो गया तो जनमेजय के प्रपौत्र निचक्षु ने कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया था। स्वप्नवास वद्धता और प्रतिज्ञा योग गंधरायण नामक नाटकों में वत्सराज उद्यन का उल्लेख है। नौवां कुरु वर्तमान दिल्ली तथा मेरठ के समीपवर्ती प्रदेश कुरु राज्य के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। मामूतशोम जातक के अनुसार इस राज्य में 300 संघ थे। पाली ग्रंथों के अनुसार यहाँ के शासक युधिष्ठिला गोत्र के थे। हस्तिनीपुर नामक एक अन्य नगर का भी उल्लेख इसी राज्य के अंतर्गत आता है। महाभारत काल का हस्तिनापुर संभवतः इसी का दूसरा नाम था। जैनों के उत्तराध्ययन सूत्र में इक्ष्वाकु नाम के राजा का उल्लेख मिलता है। वह कुरु देश का राजा था। बौद्ध ग्रंथों में भी कुरु राजाओं का उल्लेख मिलता है। जातक कथाओं में सुतसोम कौरव और धनंजय कुरु देश के राजा माने गए थे। प्रथम कुरु देश में राजतंत्र शासन था, परंतु कुछ दिनों के पश्चात यहाँ भी गणतंत्र की स्थापना हुई। महात्मा बुद्ध के समय यह एक गणतंत्र राज्य के रूप में विद्यमान था। दसवां पांचाल। पांचाल प्रदेश में वर्तमान रुहेलखंड तथा उसके समीप के कतिपय जिले सम्मिलित थे। प्राचीन काल में पांचाल देश दो राज्यों में विभक्त था। पहला उत्तर पांचाल जिसकी राजधानी अहिच्छत्र थी और दूसरा दक्षिणा पांचाल जिसकी राजधानी कांपिल्य थी। उत्तर पांचाल का राज्य दक्षिण पांचाल राज्य की भांति अधिक शक्तिशाली नहीं था, अतएव उसे अधीन करने के लिए दक्षिण पांचाल तथा कुरु राज्य निरंतर प्रयत्नशील रहते थे। चुलानी ब्रह्मदत्त पांचाल देश का एक महान शासक था जिसके बारे में महाउमग्ग जातक उत्तराध्ययन सूत्र और स्वप्नवास वद्धता तथा रामायण में चर्चा की गई है। उत्तराध्ययन सूत्र में ब्रह्मदत्त को पृथ्वी का एक महान शासक माना गया है। इसी ग्रंथ में यह भी वर्णित है कि कांपिल्य के राजा संजय ने अपना राजपाट छोड़कर जैन धर्म अपनाया था। कुरु देश की भांति पांचाल ने भी गणतंत्र राज्य की स्थापना की। ग्यारहवां मत्स्य इसकी राजधानी विराट नगर थी। यह राज्य जमुना नदी के पश्चिम तथा कुरु देश के दक्षिण में स्थित था। महाभारत में एक राजा सहाज का वर्णन है जिसने चेरी तथा मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया था। बौद्ध साहित्य में इस राज्य के राजाओं का उल्लेख नहीं मिलता। प्रथम तो मत्स्य का राज्य चेदी राज्य के अधीन और फिर बाद में मगध राज्य के अधीन हुआ। बारहवां सूरसेन मथुरा इस राज्य की राजधानी थी। महाभारत के समय इस नगर की विशेष महत्ता थी। बौद्ध ग्रंथ में अवंतीपुत्र का उल्लेख किया गया है। वह इसी सूरसेन देश का राजा था। यह राजा बुद्ध का समकालीन था। यहाँ पहले गणतंत्र राज्य था, परंतु बुद्ध के समय इसमें राजतंत्र की स्थापना हुई। महाभारत में इस राज्य के शासकों का उल्लेख है। वे यादव थे। काव्य मीमांसा में कुरुविंद नाम के एक राजा का उल्लेख है। सूरसेन शासक उच्च कोटि के थे और मेगस्थनीस के समय तक सूरसेन के राजा शांतिपूर्वक राज्य करते रहे। तेरवा अस्सक दक्षिण भारत की प्रमुख सरिता गोदावरी के तट पर स्थित यह राज्य भारत का प्रमुख राज्य था। इस राज्य की राजधानी पोटन या पोटली थी। पुराणों के अनुसार इस राज्य के शासक इक्ष्वाकु वंश के थे। जातक कथाओं में अशक देश के अनेक राजाओं के नाम मिलते हैं। एक जातक से यह विदित होता है कि किसी समय यह काशी राज्य के अधीन था। अशक देश के नृपति तवर अरुण तथा उसके मंत्री नंदीसेन का उल्लेख चुल्लुक जातक में मिलता है। वहाँ यह भी लिखा है कि इस राजा ने कलिंग देश पर विजय प्राप्त कर उस देश को अपने अधीन कर लिया था। प्राग बौद्ध काल में अवंती के साथ इस राज्य का संघर्ष निरंतर चलता रहा, क्योंकि इसकी स्थिति अधिक महत्वपूर्ण थी। इस संघर्ष का यह परिणाम हुआ कि कुछ समय के पश्चात यह राज्य अवंती के अधीन हो गया। 14 अवंती आधुनिक भारत का मालवा प्रांत प्राचीन काल का अवंती राज्य था। प्रमुखतया इस राज्य के दो भाग थे, उत्तरी अवंती तथा दक्षिणी अवंती। इनकी राजधानी क्रमशः उज्जैनी तथा महिष्मती थी। ये दोनों नगरी सांस्कृतिक तथा धार्मिक दृष्टिकोण से प्राचीन भारत की महान नगरी थी। महिष्मती नर्मदा के तट पर बसी हुई थी। महात्मा बुद्ध के समय में अवंती राज्य अत्यंत शक्तिशाली राज्य बन गया था। चंड प्रद्योत इस राज्य का प्रसिद्ध शासक था। इस शासक ने कई बार वत्सराज उदयन को अपने अधीन करने का प्रयास किया था। 15वां गंधार। गंधार राज्य में तक्षशिला, काश्मीर तथा पश्चिमोत्तर प्रदेश सम्मिलित था। कुंभकार जातक के अनुसार तक्षशिला इस राज्य की राजधानी थी। मगधराज के बिंबिसार के पास अपना दूध भेजने वाला गंधार राज पुंभ कुशाती बुद्ध का समकालीन था। अवंती के राजा प्रद्योत ने इससे अनेक युद्ध किए थे। इस युद्ध में यह प्रद्योत को परास्त करने में सफल सिद्ध हुआ था। 16वां कंबोज। गंधार और कंबोज दोनों राज्यों के नाम बौद्ध ग्रंथों में साथ साथ प्रयुक्त हुए हैं, अतएव यह गंधार राज्य का पड़ोसी राज्य रहा होगा। संभवतः इसकी सीमा गंधार के उत्तर पश्चिमी भाग पर थी। हाटक इस राज्य की राजधानी थी। कुछ समय पश्चात यहाँ भी गणराज्य की स्थापना हुई थी।